समझे या ना समझे और हमको इतनी समझ भरी है। ठाकुर हमरे नंद के लाला ठाकुरा सुमान लली है। आप नु जान दया की निदान और गई जो गई अब राख रही है। अरे गई जो गई अब राख रही है और तेरे शरण की मैंने आस गई। और लाज रखो मैंने आस गई लाज रखो लाज रखो मैंने और आस है। शिवदान बिहारी लाल की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम। सभी मिलकर थोड़ी कीर्तन बोलेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे
संसार में हमारी कोई भी कामना पूरी ना हो रही हो, अगर कहीं श्रीमद् भागवत कथा प्रेम से श्रवण कर ली जाए, प्रीति पूर्वक कथा को श्रवण कर लिया जाए, तो समस्त चिंताएं दुख हमारा दूर होता है और भगवान जीवन को मंगलमय बना दिया करते हैं। श्रीमद् भागवत में चार अक्षर हैं, भा गा वा और ता। तो भाति सर्वेषु देवेषु गीयते नारदादिभिः, वस्यते सर्वलोकान्तरन्ति भवसागरम्। भा का तात्पर्य, भा का अर्थ होता है हमारे जीवन में कीर्ति मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, हमारे जीवन की उन्नति हो, ये केवल एक अक्षर का भा का अर्थ है। और गा का अर्थ है जिस श्रीमद् भागवत महापुराण को बड़े बड़े विद्वानों ने, ब्रह्मा आदि महान कवियों ने, नारद आदि ने जिसका गायन किया है, जिसको गाया है। सुखदेव आदि जिनको किसी प्रकार लगाव नहीं था, उन्होंने इसका गायन किया है, प्रीतिपूर्वक गायन किया है। तो गायन करने से हमारा ये मानव जीवन सफल होता है, श्रवण करने से, गायन करने से हमारे जीवन में वास्तविकता प्राप्त होती है। इसलिए महाकवियों ने, ब्रह्मा आदि सभी महा महा जो तत्व को लेता थे, तत्व को जानने वाले थे, उन्होंने इसका गायन किया था, उनके मुखारविंद से निकली हुई परम पवित्र कथा है। वस्यते सर्वलोकान्, तीसरा जो अक्षर है वा, जिसको श्रवण करने से हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा मन हमारे वश में होता है, हमारे अधीन होता है। तो वस्यते सर्वलोकान्, हम संसार में चाहे जितना जोर लगा लें, जितना प्रयास कर लें, लेकिन हमारा मन हमारे वश में नहीं हो सकता। इसीलिए हमारी इंद्रियां, हमारा मन इसको श्रवण करने से तक्षण हमारी वश में होता है और हमें अपने जीवन में अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम अपने जीवन को यापन करना चाहते हैं, उस प्रकार हमारा जीवन अपने विचारों के आधार पर हमारा जीवन बनता है। ये वह तीसरे अक्षर का अर्थ होता है। और तरंती भव सागरम, 18 पुराण है, 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं और उपशास्त्र हैं। वेद, पुराण, शास्त्र और उपशास्त्र सबका निचोड़ है, सब में संसार की तमाम व्याख्या की है, धर्म की, कर्म की, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन का अर्थ क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, सनातन धर्म क्या है, लोक क्या है, परलोक क्या है। लेकिन श्रीमद् भागवत में सब कुछ व्याख्या करने के बाद हमारे जीवन में ठाकुर की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, जीवन में हमारा मोक्ष क्यों कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा। इसीलिए ये हमें श्रीमद् भागवत से प्राप्त होता है कि तरंति भव सागरम। श्रवण करने से और पठन करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से हमें सबसे दुर्लभ क्या वस्तु है कि संसार से हमारा मोक्ष कैसे होगा, संसार से जीव का उद्धार कैसे होगा। सबसे बड़ा जो कष्ट है, जो दुख है, वो क्या है, तो बारंबार संसार में आना और बारंबार मृत्यु हो जाना, ये सबसे बड़ा जो हमारे जीवन में कष्ट है, दुख है, ये सबसे बड़ा कष्ट हमारा कैसे दूर होगा। तो तरंती भव सागरम, 18 पुराण में जो कुछ व्याख्या की गई है, जो बताया हुआ है, वो सब कुछ हमारे कल्याण के लिए। लेकिन श्रीमद् भागवत एक विशेष बात बताई है, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने से, पूजा करने से, दर्शन करने से और तरंती भव सागरम, जो भागवत का चौथा अक्षर ता है, श्रवण करने से हमारे जीवन का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। किसी प्रकार हमारा मन कहीं माया में, मोह के जाल में फंसता नहीं। श्रीमद् भागवत में महत्व है, शक्ति है, इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहते हैं और 17 पुराणों को केवल पुराण कहते हैं। कलौ केशव कीर्तनाथ, शास्त्र में कहा गया है कि हजारों साल सतयुग में जो तपस्या करने में लाभ मिलता था, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम्यजितो मखैः, और द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनाथ। शास्त्रों का ऐसा चिंतन है, मैंने बताया कि भागवत का जो अर्थ होता है ये भागवत के चारों अक्षरों का अर्थ मैंने आपको बताया। आप बताया है कि श्रीमद् भागवत में कितनी सुंदर नाम की महिमा, भगवान के चरित्रों की महिमा, भक्तों की महिमा का गायन किया गया है। तो शास्त्रों का ऐसा चिंतन है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम व्यज तो मखई, कहते हैं कि हजारों साल जो सतयुग में तपस्या करने का लाभ जीवन को प्राप्त होता था, जीव मात्र को मिलता था, द्वापर में हजारों साल समाधि का जो फल मिलता था, और त्रेता युग में हजारों साल भगवान की आरती वंदन पूजा करने का जो जीवन में लाभ प्राप्त होता था, तो कलयुग के हिसाब से कलयुग में इंसान की उम्र बहुत छोटी है, केवल 125 साल का निश्चय शास्त्रों का है, लेकिन 125 साल कोई जाता नहीं है, बहुत मुश्किल से जाते हैं। तो कहते हैं कि हजारों साल तपस्या करना पड़ता था और युगों में सतयुग त्रेता और द्वापर में, तो कलयुग में तो उम्र ही इतनी नहीं होती, तपस्या कैसे करेंगे। तो भगवान ने उसका बड़ा सुंदर निर्णय कर दिया है कि जो तुमको 10,000 साल समाधि करने में फल मिलता था, तो कलयुग में केवल सत्संग में आओ, कीर्तन करो, प्रेम से बैठो, तो कलम केशव कीर्तनाथ, जो हजारों साल समाधि में इंसान को फल मिलता था, वो केवल कीर्तन करने में, और तुम्हें 1,000 साल समाधि का फल मिल जाएगा। ये कलयुग की विशेषता है। अगर हमारी आयु बहुत कम है, तो कम आयु में भी अगर हम केवल प्रेम से कीर्तन करेंगे, सत्संग में आएंगे, हमारे काम में भगवान के नाम की आवाज पड़ेगी, अंतःकरण में जाएगी, अंतःकरण हमारा शुद्ध हो जाएगा, परम पवित्र हो जाएगा और हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए कलयुग में बहुत व्यवस्था भगवान ने अच्छी बना दी। कलयुग में और विशेषता क्या है, एक तो मैंने बताया कि 1,000 साल समाधि तपस्या और सबका जो फल होता था, केवल कीर्तन में बैठो, सत्संग में बैठो, वो लाभ मिल जाता है। और दूसरी कलयुग की विशेषता क्या है, किमान से पुण्य और हो ही नहीं पापा। कितनी बड़ी विशेषता पहले होती है, हम कलयुग में अगर केवल मन से ध्यान करें कि हमने हरिद्वार में जाकर गंगा जी में स्नान किया, 10,000 गाय का दान किया, इतना हमने दान किया, पुण्य किया, केवल हम मन से केवल ध्यान कर लें, तो हमें उस पुण्य का फल मिल जाएगा, ध्यान का फल मिल जाएगा, 10,000 गाय दान करने का हमें पुण्य प्राप्त हो जाएगा, केवल मन से संकल्प करने पर। और हम केवल मन से कहेंगे, किसी का धन चुरा के ले आएंगे, किसी को जान से मार देंगे, या कोई भी हम मन से केवल पाप करेंगे, तो उसका पाप का फल नहीं लगता है। ये कलयुग की विशेषता है। यानी शुभकाम करोगे, सब चिंतन करोगे, शुभकाम का फल मन से केवल करने में मिल जाएगा, और अगर पाप करोगे तो मन से पाप करने का फल नहीं लगेगा, पाप का जो है कोई फल नहीं मिलेगा, ना किसी प्रकार हमें पाप का फल भोगना पड़ेगा। लेकिन ये बात नहीं है, अगर हमारा बुरा चिंतन हो जाएगा तो हमारे मन पे जरूर असर पड़ेगा, हमारे मन का बुरा चिंतन होने से हमारे जीवन की सोचने की रूपरेखा बदल जाएगी, और रूपरेखा अगर बदल जाएगी तो हमारा जीवन दुख में जा सकता है। लेकिन जो कलयुग की विशेषता मैंने बताई कि मानुष पुण्य, मानसिक हम पुण्य करेंगे, धर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, उसका हमें पुण्य मिल जाएगा, और मन से अगर पाप होगा तो उस पाप का फल हमें जीवन में नहीं लगेगा। ये कलयुग की विशेषताएं। कलयुग में हमें शास्त्रों को पढ़ने के लिए, तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, चिंतन करने के लिए शुद्धि चाहिए, हमें हरेक प्रकार से सत्य चरित्र चाहिए, मंत्रों की शुद्धि, जीवन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, कर्म की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि, समय की शुद्धि, हमें बहुत कुछ ध्यान करना पड़ेगा, ये और युगों की बात है। लेकिन कलयुग में गाय राम गुणी गण बिमल और भगवती ताही प्रयास, ना हमें कोई शुद्धि करना है, ना हमें कोई ध्यान देना है, ना मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हमको करना है, केवल कीर्तन करो, चाहे सीधा हो चाहे उल्टा हो, कीर्तन करोगे तो कीर्तन करने से क्या होगा, उत्तम भाव बन जाएगा, अच्छा शुद्ध अंतःकरण बन जाएगा। लोग कहते हैं गंगा स्नान करने से मंदिर में जाने से क्या लाभ होता है, हमारा तो मन वैसे ही गंगा है, हम घर में ठीक है, लेकिन मंदिरों में जाने से, गंगा जी का स्नान करने से, भगवान का नाम जपने से, सत्संग में जाने से क्या होता है, अनेक जन्मों के कर्मों का जो हमारे अंतःकरण में प्रभाव पड़ा हुआ है वो दुष्कर्म का फल हमारा स्वच्छ हो जाता है, पावन पवित्र हो जाता है। तो शुभ काम करो, सत्संग में जाओ, गंगा स्नान करो, भगवान का नाम सुनो, कीर्तन सुनो, कुछ भी करने से हमारे सबसे पहले क्या होता है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अनेक जन्मों की कल्पित दुष्कर्मों का फल अंतःकरण में जम जाता है, और जिस समय जीवात्मा सत्कर्म करता है, पुण्य करता है, दान करता है, व्रत करता है, नियम करता है, पूजा पाठ करता है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, विचार शुद्ध बन जाता है। अंतःकरण बन गया, विचार बन गया, तो जीवन में कर्म बन जाएगा, और जब कर्म हमारा मंगल बन जाएगा तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। इसीलिए सारे वेद, सारे शास्त्र, पुराण, धर्म ग्रंथ सबका चिंतन क्या है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारी वृत्ति ठीक बन जाए, हमारा मन सुंदर बन जाए, और जब मन सुंदर बन जाएगा तो क्या होगा, जीव का परमात्मा से संबंध हो जाएगा और जीव का संसार से कल्याण हो जाएगा। तो सारे वेदों का, शास्त्रों का, प्राणों का सारांश, जैसे किसी भी वृक्ष में एक पका हुआ फल होता है, उसी प्रकार वेदों का, शास्त्रों का, प्राणों का, धर्म ग्रंथों का एक पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। हम वेदों को नहीं पढ़ सकते हैं, शास्त्रों को, श्रुतियों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सबका सारांश क्या है, श्रीमद् भागवत का प्रेम से श्रवण कर लेंगे, पूजन कर लेंगे, चिंतन कर लेंगे, तो हमारे जीवन में सकल शास्त्रों के अध्ययन का हमें जीवन में लाभ प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि निदम कल्पितरोर्दलितं फलं अर्सुखिमुखालं व्रतद्रवसंयुतं पिबद्भाविवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाहु विभावका। ये धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र प्राणों का एक पका हुआ फल, इस फल को हमें कैसे खाना है, कैसे पान करना है, तो शास्त्रों ने कहा है कि निगा विकल्पित अरोगलितम फलम, ये पका हुआ फल है, इसको बारंबार हमें पान कैसे करना है, तो शास्त्र की आज्ञा है कि निगम माने वेद शास्त्र, निगम कल्पित अरोगलितम फलम, तो सब शास्त्रों का पका हुआ फल क्या है, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो कहते हैं बारंबार इसका पान करो, कैसे पान करोगे, तो कर्ण पुटाई ही किवंत्या, कानों के द्वारा पान करना है, इस पके हुए फल के रस को बारंबार पान करने का शास्त्र की आज्ञा है। तो कैसे पान करोगे, बारंबार कैसे पान किया जाए, बोले कर्ण पुटाई ही कानों के द्वारा बारंबार पान करो। कभी ऐसा मत सोचना कि ये वही कथा है, वही सत्संग है, वही भगवान का नाम राधे राधे जो हमने कई बार सुना है, इससे हमारा क्या बनने वाला है। जैसे साबुन लगाने पर मल दूर होता है, इसी प्रकार बारंबार वही नाम सुनने से अनेक जन्मों के दुष्कर्मों का दुष्फल अंतःकरण में जो जमा हुआ है वो बारंबार सुनने से अंतःकरण में जब वो नाम जाता है तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, अंतःकरण हमारा निर्मल बन जाता है। इसीलिए कभी ऐसी भाव नहीं बनना चाहिए कि ये वही नाम है, बारंबार इसको क्या सुनना है। कर्ण पुटाई ही पिबन्त्या, कानों के द्वारा बारंबार पान करो, बारंबार कानों के द्वारा पान करने से अंतःकरण पावन बन जाएगा, विचार निर्मल बन जाएगा और भावनाएं हमारी शुद्ध बन जाएंगी, जीवन हमारा उज्ज्वल बन जाएगा, परम पावन बन जाएगा। इसीलिए सारे संसार का कल्याण करने के लिए, सारे जीवों का उद्धार करने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने विचार किया क्या करना चाहिए, तो भगवान के पास चले गए। भगवान के पास गए, महाराज सारे संसार का कल्याण करने की भावना से हम आपके पास आए हैं, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान ने चक्र को आदेश दिया कि जाओ, तुम मृत्यु लोक में जाओ, पृथ्वी पर जाओ, और संतों से कहा कि तुम चक्र के पीछे पीछे जाओ। जब मृत्यु लोक में चक्र आया तब सुदर्शन को भगवान ने आदेश दिया, वैकुंठ धाम क्षीर सागर धाम से चक्र वो मृत्यु लोक में आया तो मृत्यु लोक में आगे नैमिषारण्य क्षेत्र में और वो चक्र स्थित हो गया, रुक गया। तो संतों ने निश्चय कर लिया कि यहाँ बैठकर कि हमें सारे संसार के लोगों का कल्याण करने का कोई विचार विमर्श करना चाहिए। अर्थात ले जाकर जी नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके और वहां चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि संसार में जितने जीवात्मा हैं, जितने लोग हैं, उन जीवों का कल्याण कैसे होगा। सब जीवात्मा अपने अपने संसार में लगे हैं, कोई कमाई में लगा, कोई बच्चों में लगा है, कोई किसी प्रकार कोई कहीं लगा है। सारी जिंदगी एक भी श्वास उसके पास इसलिए फालतू नहीं है कि मैं मंदिर में जाकर भगवान का शुक्र गुजार करूं, एक भी श्वास उसके पास नहीं। जितने जीवन में उसको श्वास मिले हुए हैं सारे श्वास संसार में बीत जाएंगे, सारे श्वासों से वो संसार में जीवन गुजारेगा, लेकिन अपने कल्याण के लिए एक भी श्वास उसके पास नहीं। संतों ने विचार किया क्या उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करने से नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठ करके 88,000 संत हैं, उनमें बड़े विद्वान जिनका नाम है सूत जी महाराज, जो भी संत उनसे प्रश्न करता है उन सब के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और प्रश्न करने वाले सबसे श्रेष्ठ कौन है, श्री सोनक जी महाराज। सोनक जी महाराज प्रश्न करते हैं और सूत जी महाराज सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सारे संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए 88,000 संत बैठ करके और चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका